पूरा दिन ढूंढने के बाद भी जब इशिका को अभिमन्यु नहीं मिला तो दिशांक ने उसे राजवंश विला में छोड़ दिया था। हालांकि उसे छोड़ने के बाद दिशांक खुद अभिमन्यु को ढूंढने के लिए निकल चुका था। इस बीच नक्श वहां आ पहुंचा था। वो बिल्कुल किसी साइकोपैथ की तरह बात कर रहा था। नक्श बार बार इशिका को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। हर कोई उसे समझा रहा था लेकिन वो पागलपन पर उतर आया था। उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए ले जाने के लिए पलटा ही था कि उसके सामने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देखते ही नक्श ने डरकर तुरंत इशिका का हाथ छोड़ दिया था। अभिमन्यु को पृथ्वी वहां पर लेकर आया था। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे ताकि उसका घाव किसी को दिखाई ना दे, लेकिन अभिमन्यु के बाल बिखरे हुए थे। वो हमेशा से अलग और थोड़ा परेशान लग रहा था। अभिमन्यु को देखते ही उन सब की जान में जान आई। इशिका उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अभिमन्यु ने आंखों के इशारे से उसे वहीं पर खड़े रहने को कहा। वहीं नक्श का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अभिमन्यु ने नक्श की आंखों में देखा और बेइंतहा सर्द आवाज में कहा, क्या करने जा रहे थे?
मैं बस इशिका को समझा रहा था कि उसे ऐसी हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पूरे दिन से आपको ढूंढते हुए बिना कुछ खाए पिए घूम रही है, नक्श ने हड़बड़ाते हुए जवाब में कहा।
अच्छा, तो तुम इशिका को समझा रहे थे या उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। नक्श की नज़रें कुछ पल के लिए नीची हो गई थीं, लेकिन तभी उसके मुँह पर एक जोरदार पंच पड़ा जो कि अभिमन्यु ने मारा था। हालांकि उसके कंधे में चोट लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन नक्श ने जो किया था उसकी सज़ा भी देनी ज़रूरी थी। डॉक्टर ने अभिमन्यु को हाथ तक हिलाने से मना किया था और पूरे फोर्स से पंच करने की वजह से उसके कंधे पर लगे स्टिचेस खुल गए थे और अभिमन्यु के खून निकलने लगा था। वहीं नक्श को अभिमन्यु ने इतना ज़ोरदार मुक्का मारा था कि उसके होठों के कोने से खून निकलने लगा था।
आई वॉर्न यू नक्श राजवंश, आगे से इशिका के आसपास भी नजर आए तो वहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। अभिमन्यु ने नक्श की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा।
नक्श जल्दी से घबराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से जाने लगा। गलती उसी की थी और उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अभिमन्यु की आंखों में देखकर उसे कुछ कह सके। नक्श के वहां से निकलते ही अभिमन्यु ने 2 से 3 गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, पर नक्श की हरकत की वजह से वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। इतने में इशिका उसके सामने आई और उसके गले लग गई थी। उसने अभिमन्यु से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? कितनी बार कहा है कि बिना सिक्योरिटी के मत रहा करो। फोन तक नहीं रिसीव किया मेरा। एक बार बता देते तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो रही थी? बोलते वक्त इशिका की आवाज भारी हो रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। अभिमन्यु उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी यही डर था कि अभिमन्यु उसे छोड़कर ना चला जाए। अभिमन्यु ने प्यार से इशिका की पीठ को सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें किसी और सी बात में आकर इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ब्रेव हो इशिका, और मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। इशिका अभिमन्यु से अलग हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। ना चाहते हुए भी इशिता की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। अभिमन्यु ने अपने अंगूठे से उसका आंसू साफ किया और उसकी आंखों में देखकर बेहद शांत लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु उसे यकीन दिलाना चाहता था कि उसे कुछ नहीं हुआ है। इशिका के बाद अभिमन्यु वसुधा के पास गया और जाकर उनके सीने से लग गया था। वो जानता था कि जितनी परेशानी इशिका है उतनी ही वसुधा भी थी।
जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, तो मुझे सताना कब छोड़ोगे? कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल कर लिया करो लड़के, वसुधा ने सुबकते हुए प्यार से शिकायत लगाते हुए कहा। अभिमन्यु के चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी स्माइल थी। नक्श को देखकर गुस्से में वो अपना आपा खो बैठा था, लेकिन फिलहाल इशिका और वसुधा से गले लगने के बाद उसे राहत महसूस हो रही थी। कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपको मेरे इस बिहेवियर को झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर, अभिमन्यु ने काफी हल्के लहजे से कहा, पर वसुधा से अलग हुआ और उनके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, इतनी जल्दी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अभी तो आपको मेरे ढेर सारे बच्चों को झेलना होगा और उनके लिए शेयर्स की लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या पता कल को कौन सा राजवंश फैमिली का मेंबर उठा जाए और बोले कि उन्हें भी हिस्सा चाहिए। अभिमन्यु उनका मूड सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पार्थ ने बीच में कहा, अच्छा तो तुम मुझे ताने मार रहे हो। वैसे सही है, पहले अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लो, वरना मिस्टर प्रशांत राजवंश का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है उनके 3-4 और बच्चे पैदा करके अलग अलग जगह पर छोड़े हुए हों। पार्थ गुस्सा होने के बजाय इस मजाक में उसका साथ दे रहा था। अभिमन्यु ने आंखों आंखों में उसे भी थैंक्स कहा, जो वो हालत में उनके परिवार के साथ खड़ा था। वसुधा ने पार्थ की तरफ देखकर कहा, यकीन नहीं होता कि तुम उस औरत के बच्चे हो। उसने हमेशा दूसरों की जिंदगी में कड़वाहट घोलने की ही सोची है। तुम्हारे बड़े भाई को भी इस मकसद से भेजा था। देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारे बड़े भाई नकुल हमेशा यही लगता था कि मैंने उसकी माँ के साथ बहुत सारे अत्याचार किए हैं। वसुधा की बात सुनकर पार्थ का दिल कड़वाहट से भर आया था, हालांकि ये उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। उसकी माँ सुनैना ने हमेशा उसे भी यही कहा था कि उसे राजवंश फैमिली में बहुत परेशान किया गया था, इसी वजह से आज वो बदला लेने के लिए आया था। अब उस कहानी में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता था। पार्थ बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गया था। सब कोई अभिमन्यु के आने से खुश था। इस चक्कर में वो मालविका के बारे में पूछना भूल गया था, लेकिन राधिका नहीं भूली थी। जब सबका मूड थोड़ा लाइट हो गया तब राधिका ने अभिमन्यु से गंभीर आवाज में कहा, ये अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मालविका वो कहाँ है और अचानक तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई थी? उसने राजवंश एम्पायर की सिक्योरिटी को कैसे तोड़ा और तुम्हारे केबिन में खून वो किसका था? मालविका का जिक्र आते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने उसी अंदाज में कहा, वो खून मालविका का ही था। मैं उसे लेकर मिस्टर सिंघानिया के पास गया था क्योंकि वो उन्हीं के पास से भाग कर आई थी। अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। और वो खून वो किसका था? इशिका ने पूछा। वो मालविका का ही था, अभिमन्यु ने जवाब दिया। हालांकि वो खून सिर्फ मालविका का ही नहीं अभिमन्यु का भी था। वो तो अभिमन्यु ने ब्लैक शर्ट पहना था और चोट उसके पीठ पर थी, वरना अब तक उसके कंधे से आ रहा खून उन्हें दिख जाता। हमें पुलिस को बता देना चाहिए, इशिका ने कहा। पृथ्वी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मिस्टर राजवंश का कॉल आया था, मैं उन्हें लेकर सीधा पुलिस स्टेशन ही गया था। स्टेटमेंट वगैरह की फॉर्मेलिटी हो चुकी है। पुलिस को यही लगता है कि मालविका मिस्टर राजवंश को जख्मी करने के बाद भाग गई थी। वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। चलो अच्छा है, बला टली। वैसे भी मिस्टर सिंघानिया अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपने दुश्मनों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी हमारे रास्ते में नहीं आएगी, राधिका ने जवाब दिया। सब कुछ ठीक हो चुका था तो उन्होंने राहत की सांस ली। अभिमन्यु ने फिर इशिका की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी अच्छे हाल में नहीं लग रही थी। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि अभिमन्यु को ढूंढने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी।
अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका की तरफ रुक करते हुए कहा, तुम्हें खुद को इस तरह नहीं थकाना चाहिए। तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? ना तुम ठीक से अपनी केयर कर रही हो और आज तो हद भी हो गई। पृथ्वी ने बताया कि तुम पूरे दिन से मुझे ढूंढते हुए बाहर घूम रही थी। शक्ल से पता चल रहा है कि कुछ नहीं खाया होगा। तुम गायब थे और तुम्हें क्या लगता है, ऐसी हालत में मैं रिलैक्स करके बैठ जाती हूँ और आराम से खाना खाती? इशिका ने उसे घूरते हुए कहा। अगर तुम ठीक थे तो कम से कम एक कॉल करके बता सकते थे। एटलीस्ट हम तुम्हारे लिए इतना परेशान तो नहीं होते। मैं ऐसी जगह पर था जहाँ पर नेटवर्क नहीं था। बाद में मैंने सोचा सब कुछ सॉल्व करने के बाद ही तुम लोगों के पास चलता हूँ, अभिमन्यु ने शांत लहजे में जवाब दिया। चलो अब लड़ना बंद करो दोनों और आराम करो। पहले हम सब साथ में डिनर करते हैं, क्योंकि सच में पूरे दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया है, पार्थ ने उनकी बहस के बीच में कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। पृथ्वी का काम हो गया था, इस वजह से वो वहां से जाने को हुआ। तभी अभिमन्यु उसकी तरफ पलटकर बोला, तुम भी पूरे दिन से परेशान हो रहे हो, चलो आओ साथ में डिनर करते हैं। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप आराम से खाना खाइए, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। मैं विला में ही हूँ और आपकी सिक्योरिटी अश्योर करता हूँ, पृथ्वी ने काफी प्रोफेशनल लहजे में जवाब दिया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कभी कभी खुद का भी सोच लेना चाहिए। आ जाओ साथ में ही डिनर करते हैं। अभिमन्यु के इतना इंसिस्ट करने पर पृथ्वी मना नहीं कर पाया। वो उनके पीछे जाने को हुआ ही तभी अचानक एक गाड़ी तेज गति से चलते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। सब कुछ सॉल्व हो गया था, फिर अब कौन हो सकता था? ये जानने के लिए उन सब ने मेन गेट की तरफ देखा। वो गाड़ी उन सब के लिए नहीं थी। अचानक एक अनजान गाड़ी को अंदर देखकर अभिमन्यु ने पृथ्वी से हल्के गुस्से में कहा, ये क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें साफ कहा था कि गार्ड को समझा देना कि कोई भी अननोन गाड़ी बिना परमिशन के अंदर नहीं आनी चाहिए, और ये मेन गेट क्यों खोल रखा है? मैं जाकर बात करता हूँ, पृथ्वी बोला। वैसे तो पहले ही सभी गार्ड्स को हिदायत दी हुई थी कि वो किसी भी अनजान गाड़ी को अंदर न आने दे, लेकिन ऐसा कौन था जिसे गार्ड्स ने भी नहीं रोका था? अगर केशव भी आता तो अभिमन्यु और बाकी लोग उसकी गाड़ी को पहचानते थे। पृथ्वी के जाने से पहले ही वो गाड़ी अंदर आ चुकी थी। जैसे ही उस गाड़ी में मौजूद शख्स बाहर निकला, उन सब के चेहरे पर अचानक से कड़वाहट के भाव उभर आए थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि गार्ड ने उस गाड़ी को क्यों नहीं रोका था। क्या लगता है कौन आया होगा? वैसे तो अभी थोड़ा तमाशा लगा और बाकी है। चलो नक्श को भी अच्छा सबक मिल गया, ऐसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं उसके साथ। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। तो प्लीज आप पढ़कर समीक्षा किया करो।